रुद्र, तुम प्रजापति का अंत कर दो। सभी देवताओं के भय यानी देव भय ने महादेव से ब्रह्मा को मारने की प्रार्थना की। सृष्टि के रचयिता से क्यों परेशान थे देवगण? उन्हें क्यों ब्रह्मा के प्राण लेने की प्रार्थना लेकर रुद्र की शरण में जाना पड़ा? इस पर देवों के देव ने क्या जवाब दिया? आइए जानते हैं इसका जवाब। भाग एक, गीत चतुर्वेदी। प्रजापति के मन में खलबली मची हुई थी। हर पल ऐसा लगता जैसे कान में तूफानी हवाएं चल रही हों। उसके शोर से आक्रांत होकर उन्होंने आंखें खोल दी। दूर दूर तक सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिख रहा था। ये कोई तूफान नहीं, मेरे मन में चलता हुआ भ्रम है, खुद को समझाते हुए उन्होंने फिर से आंखें मूंद ली। एक बार फिर ध्यान लगाकर अपने आप में खो जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन कुछ ही पलों बाद अजीब सी वो आवाज उनके कान के पर्दों पर हथौड़े की तरह बजने लगी। उनके पूरे शरीर में भय की लहर दौड़ गई। पिछले कुछ समय से वो सृष्टि की रचना करना चाहते थे। उन्हें सबसे अधिक भरोसा अपने मन पर था। वो खुद से कहते, मन से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। मन ही मेरा उपकरण है, मन ही मेरा अस्त्र। मैं मन से आरंभ करके मानव तक पहुंचूंगा, जो सोचूंगा उसे साकार करूंगा। उनकी प्रतिज्ञा दृढ़ थी। अपनी सोच को साकार करते हुए अपने जैसे कई मानस पुत्रों की रचना करने में उन्होंने सफलता पा ली थी, लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी थी। सृष्टि का विकास नहीं हो रहा था। डर था कि उनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मन और मानव के बीच एक मार्ग नहीं होना चाहिए। वो कौन सा मार्ग है? यही आकर उनकी सोच रुक जाती थी। अपनी असफलता और अक्षमता पर उन्हें क्रोध आने लगा। वो बेचैन होकर अपना सिर हिलाने लगे। तभी जोर की एक आवाज आई, जैसे कहीं कोई विस्फोट हुआ हो। इतनी भयानक आवाज की कल्पना उन्होंने कभी ना की थी। उस आवाज से पूरा आकाश कांप गया। उनकी देह के हर रोम से कंपकंपी छूट गई। अपने आप उनकी आंखें खुल गईं। सामने एक बालक खड़ा था। उसके कंठ के आसपास का हिस्सा नीला था और बाकी शरीर लाल, जैसे अग्नि की लपट। पूरा दम लगाकर चिल्लाते हुए वो रो रहा था। कान फाड़ देने वाली उसकी तूफान जैसी आवाज से बचने के लिए प्रजापति ने अपने कानों को हथेलियों से ढककर हैरानी से पूछा, तुम कौन हो पुत्र? उनकी आंखों में आंखें डालकर उस बालक ने कहा, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं। ठीक है, पर तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए? मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे एक नाम चाहिए। क्या नाम दूं मैं तुम्हें? मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम हो कौन, कहां से आए हो और क्यों इस कदर रो रहे हो। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, मुझे नाम दो, मुझे एक नाम चाहिए। ये कहकर उस बालक ने अपनी रोने की आवाज कई गुना बढ़ा दी। प्रजापति को लगा कि उस आवाज से उनका सिर फट जाएगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रुद्र नाम देता हूं, यानी जो रोता रहे चिल्लाता रहे। आज से तुम रुद्र कहलाओगे, अब तुम चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं होऊंगा, मुझे एक और नाम दो। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम है भव, जिसका अर्थ है अस्तित्व। मुझे पता है तुम अपने अस्तित्व के लिए रो रहे हो, आज से तुम भव कहलाओगे। अब चुप हो जाओ और कुछ खा लो। मैं चुप नहीं होऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे एक और नाम दो। अच्छा, तो तुम्हारा नाम है शर्व, यानी जो तीर चलाता हो, घायल करता हो। जैसे अभी तुम्हारे रोने की ये आवाज मेरे कानों में तीर की तरह चुभ रही है। अब तो चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं होऊंगा, मुझे एक और नाम दो। तुम्हारा नाम है ईशान, यानी स्वामी। अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। मैं नहीं चुप होऊंगा, मुझे एक और नाम दो। अरे, अब भी चुप नहीं होते? मेरे दिए हर नाम के साथ तुम्हारे रोने की आवाज बढ़ती जाती है। लो, मैं तुम्हें एक और नाम देता हूं, पशुपति, यानी मेरे बनाए सारे पशुओं के तुम मालिक हो। अब तो चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं होऊंगा, मुझे एक और नाम दो। तुम बहुत जिद्दी हो, देखने में छोटे लेकिन अनुभूति में विकराल। मैं तुम्हें भीम नाम देता हूं। कृपया अब चुप हो जाओ। मैं नहीं चुप होऊंगा, मुझे एक और नाम दो। इतनी उग्रता, तुम्हारी आवाज से मेरा सिर फट जाएगा। मैं तुम्हें नाम देता हूं उग्र। अब तो कम से कम चुप हो जाओ।
मैं नहीं चुप होऊंगा, मुझे एक और नाम दो।
प्रजापति को लगा अब वो चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके माथे पर पसीने की थकी हुई बूंदें छलछला गईं, हाथ पैर कांपने लगे, क्लांति से आंखें मूंदने लगी। उनके मुंह से निकला, महादेव।
मैं तुम्हें नाम देता हूं महादेव, तुमसे बड़ा कुछ भी नहीं। तुम देवों के देव हो, स्वामियों के भी स्वामी, तुम महादेव हो।
यह सुनते ही बालक चुप हो गया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, चारों ओर एक अभूतपूर्व शांति फैल गई। इतनी शांति जितनी प्रजापति ने कभी महसूस भी नहीं की थी। इतनी शांति कि प्रजापति अपने दिल की हर धड़कन को सुन सकते थे। वो धप से उस चट्टान पर बैठ गए जहां वो मौन ध्यान करते थे और अपने मन की शक्ति को आजमाते थे। वो बालक अभी तक मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर लगता ही नहीं था कि थोड़ी देर पहले ये इतनी भयंकर आवाज में रो रहा था। प्रजापति का भ्रम था कि वो अकेले हैं, लेकिन उनके बनाए 33 तरह के देवता दूर से ये सब देख रहे थे। उनमें खलबली मच गई थी। वे दौड़ दौड़ कर अपने लिए छिपने की जगह खोज रहे थे। वे पहले 33,000 जगहों पर छिपे, फिर 33,00,000 जगहों पर, फिर वे सब 33 करोड़ सितारों के पीछे छिपकर प्रजापति और उस बालक को देखने लगे। उनमें से एक देवता फुसफुसाया, रुद्र। दूर खड़े उस बालक ने वो फुसफुसाहट सुनकर जोर से हुंकार भरी। घबराकर प्रजापति ने अपना दाहिना हाथ उठाया और देवताओं से कहा, बस, कोई इसका नाम नहीं लेगा, कोई इसे नहीं पुकारेगा, वरना ये खुद रोने के बजाय सबको रुलाएगा।
हां प्रजापति, मैंने तुम्हारे दिए हर नाम को स्वीकृत किया, लेकिन तुमने मुझे पहली बार में ही क्यों नहीं पहचाना? मैं सदा शांत रहता आया, तुमने मेरे भीतर के क्रोध को जागृत किया है। अब चारों दिशाओं में मेरी गर्जना गूंजेगी। इतना कहकर रुद्र बेहद रफ्तार के साथ दौड़ पड़ा। धनुष से निकले बाण की तरह, मेघ से निकली विद्युत की तरह, पूरे आकाश में सिर्फ एक ही आकृति दिख रही थी, धूमकेतु की तरह यहां से वहां दौड़ता हुआ रहस्यमयी रुद्र। प्रजापति सोचने लगे, मैंने ऐसा क्या किया है जो ये मुझे रुलाना चाहता है? आखिर क्या चल रहा है रुद्र के मन में?
तुम ब्रह्मा को मार दो रुद्र। एक चट्टान से पीठ टेक कर बैठे रुद्र ने जब ये बात सुनी तो झटके से अपनी आंखें खोल दी। आसपास कोई नहीं था, लेकिन यह आवाज बहुत साफ आई थी। उसने धीरे से पूछा, कौन है यहां? ये किसकी आवाज थी?
रुद्र, तुम प्रजापति को मार दो।
इस बार रुद्र ने आवाज की दिशा में देखा। अंगूठे के आकार जितना एक व्यक्ति उसके दाहिने पैर के पास खड़ा था। काला लबादा ओढ़े, सिर से पांव तक ढका हुआ। उसके चेहरे की जगह गाढ़ा अंधकार था, जिस पर जलते हुए दियों की तरह दो आंखें चमक रही थी। वो भले आकार में छोटा, लेकिन अनुभूति में भयावह था। हाथ हिला हिला कर वो रुद्र को अपनी ओर देखने का इशारा कर रहा था।
रुद्र ने हैरानी से पूछा, इतने छोटे कौन हो तुम? कहीं तुम बालखिल्य ऋषि तो नहीं जो अंगूठे के आकार के होते हैं? लेकिन तुम अकेले क्यों हो?
बालखिल्य तो हमेशा 60,000 की संख्या में एक साथ कदम ताल करते हुए चलते हैं, जैसे किसी सेना के सिपाही।
नहीं रुद्र, उस आकृति ने जवाब दिया, ना तो मैं बालखिल्य हूं और ना ही ऋषि। मेरा नाम देव भय है, यानी देवताओं के भीतर रहने वाला भय। देवतागण बहुत डरे हुए हैं। जैसे जैसे उनका डर बढ़ता है, मेरा आकार भी बढ़ जाता है। अगर मैं अपने असली आकार में प्रकट हो जाऊं तो सारा आकाश ढक जाएगा। इसलिए मैं ये छोटा सा रूप धारण कर तुम्हारे सामने आया हूं। मैं किसी एक देवता का नहीं, बल्कि सारे देवताओं का सम्मिलित डर हूं, इसलिए तुम्हें मेरा चेहरा नहीं दिख सकता।
क्या सच में देवता इतने डरे हुए हैं?
हां, वे बेहद डरे हुए हैं, और इसीलिए वे चाहते हैं कि तुम ब्रह्मा प्रजापति की हत्या कर दो। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो ये दुस्साहसी काम कर सके। हमारी मदद करो।
लेकिन क्यों? प्रजापति इस सृष्टि के ब्रह्मा हैं, वो सारे देवताओं के पिता हैं। नई सृष्टि की रचना उन्होंने अभी शुरू ही की है। सारे मनुष्यों और जीव जंतुओं की उत्पत्ति अभी बाकी है, उनका काम पूरा नहीं हुआ है,
और तुम आकर कह रहे हो कि मैं ब्रह्मा की हत्या कर दूं? क्या मैं तुम्हारा दास हूं? क्या मैं तुम्हें किराए का हत्यारा लगता हूं देव भय?
ऐसी गरजती हुई आवाज सुनकर देव भय दुबक गया। इससे रुद्र का मनोरंजन हुआ। उसने देव भय को उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और चेहरे के सामने लाकर कहा, जवाब दो।
देव भय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम हमें गलत मत समझो रुद्र, हमें पता है कि तुम महादेव हो, तुम हत्यारे नहीं लेकिन संहारक तो हो, इस समय हमारे रक्षक हो और ब्रह्मा को मारे बिना हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। हम अपने बीच से एक योग्य देवता को चुनकर नया ब्रह्मा बना देंगे। सृष्टि का काम बिना बाधा चलेगा। हमारे पास ब्रह्मा से भी अधिक योग्य देवता मौजूद हैं।
लेकिन तुम लोग ब्रह्मा प्रजापति से इतने क्रोधित क्यों हो?
रुद्र ने दुलार भरी आवाज में पूछा, जैसे किसी नाराज बच्चे को पुचकारा जाता है।